वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
दोस्तों, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं मरियम मेहरदादी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। आइए पहले सूरह यासीन की आयत नंबर 59 की तिलावत सुने।
और हे अपराधियों, आज तुम छटकर भले कर्म करने वालों से अलग हो जाओगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया कि कुरान मजीद के अनुसार भले कर्म करने वालों का स्वर्ग में क्या स्थान होगा और उन्हें कौन कौन से अनुकंपाएं हासिल होंगी। उन्हें वहां शारीरिक आराम और मानसिक सुकून प्राप्त होगा। ये आयत कहती है कि प्रलय के दिन बुरे कर्म करने वालों को सत्कर्मियों की पंक्ति से अलग कर दिया जाएगा और वे दूसरे रास्ते पर चलने लगेंगे, वो रास्ता जिसका अंत नरक के दंड पर होता है और कोप व कड़ाई के अलावा वहां कुछ नहीं होता।
उन लोगों ने दुनिया के नश्वर व जल्द ही समाप्त हो जाने वाले आनंदों को प्रलय के हमेशा रहने वाले दंड के मूल्य पर खरीदा है, और आज वे अपने गलत चयन का परिणाम देखेंगे, क्योंकि प्रलय ईश्वरीय न्याय का स्थान है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि अच्छे व बुरे एक ही पंक्ति में रहें, जिस तरह से कि वे दुनिया में एक साथ जिंदगी गुजारते थे।
इस आयत से हमने सीखा कि प्रलय लोगों के विचारों, आस्थाओं व कर्मों के आधार पर उन्हें अलग करने का दिन है। संभव है कि वहाँ माँ बाप और बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएं, और ये भी संभव है कि जिन लोगों का आपस में कोई रिश्ता न हो वे एक साथ हो जाएं।
प्रलय बुरे लोगों को दंडित करने या सदकर्मियों को पारितोषिक देने के संबंध में ईश्वर के वादे के पूरा होने का दिन है।
आइए अब सूरह यासीन की आयत नंबर 60, 61 और 62 की तिलावत सुने।
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ।
हे आदम की संतान, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की उपासना न करोगे, कि निश्चय ही वो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है, और ये कि मेरी ही उपासना करोगे कि यही सीधा मार्ग है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से बहुत से गुटों को पथ भ्रष्ट कर दिया, तो क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे।
ये आयतें उन पापियों व दुष्कर्मियों को संबोधित करती हैं जो प्रलय में उपस्थित हुए हैं और ईमान वालों की पंक्ति से अलग कर दिए गए हैं। ईश्वर की ओर से ये संबोधन धिक्कार के साथ है कि क्यों तुम लोगों ने शैतान का अनुसरण किया और ईश्वर के मार्ग को भूल गए।
कुरान मजीद इस ईश्वरीय संबोधन को उस वचन को याद दिलाने वाला बताता है जो ईश्वर ने इंसान की सृष्टि के आरंभ में सभी मनुष्यों से लिया था, जब हजरत आदम व उनकी पत्नी हव्वा स्वर्ग में शैतान के झांसे और बहकावे में आ गए तो ईश्वर ने उनसे पूछा था कि तुम क्यों शैतान के उकसावे में आए और वो चीज़ खा ली जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुम नहीं जानते कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है।
इंसान अपनी प्रकृति और ईश्वरीय प्रवृत्ति के आधार पर समझता है कि बुरे कर्म उसकी इंसानियत से मेल नहीं खाते, और जो भी जिस रूप में भी उसे इस प्रकार के कामों की ओर बुलाता है वो शैतान है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या न हो। मनुष्य की ईश्वरीय प्रकृति उसे बुराइयों से रोकती है और ईश्वर के आदेशों के पालन के लिए प्रोत्साहित करती है।
इंसान की आंतरिक प्रवृत्ति के अलावा बाहर की दुनिया पर एक नज़र और अतीत के लोगों का इतिहास भी ये दिखाता है कि बहुत अधिक लोग पाप व बुराई में ग्रस्त हुए और उनका अंजाम तबाही व बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। अगर हम इस प्रकार के लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी गुमराही की मुख्य वजह अंधविश्वास और पदभ्रष्ट व गलत विचार वाले लोगों का अनुसरण था।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर ने प्रकृति, आंतरिक बुद्धि और बाहरी पैगंबरों के माध्यम से इंसान से वचन लिया है कि वो कभी भी शैतान के रास्ते पर नहीं चलेगा।
इंसान की दो ही स्थिति होती है, या तो वो ईश्वर का बंदा होता है या फिर शैतान का।
हम हर नमाज में ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर बाकी रखे। इन आयतों के आधार पर सीधा रास्ता ईश्वर के अनुसरण और उसकी उपासना का है।
विचार, बुद्धि व चिंतन से न केवल जीवन के आराम के पहलुओं के लिए बल्कि अतीत के लोगों के इतिहास की पहचान और शैतान से धोखा खाने वालों के कटु अंजाम से पाठ लेने के लिए लाभ उठाना चाहिए।
आइए अब सूरह यासीन की आयत नंबर 63, 64 और 65 की तिलावत सुने।
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون।
ये वही नरक है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते रहे हो उसके बदले में आज इसमें प्रविष्ट हो जाओ और जलते रहो। आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं।
पिछली आयतों में प्रलय में अपराधियों की स्थिति का उल्लेख करने के बाद कुरान मजीद इन आयतों में कहता है कि पैगंबरों ने दुनिया में ही लोगों तक ईश्वर का ये वचन पहुंचा दिया था कि सत्कर्मियों को पारितोषिक और दुष्कर्मियों को दंड दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों ने इस वचन पर विश्वास नहीं किया बल्कि मजाक तक उड़ाया। आज वे प्रलय में अपनी आँखों से उस वादे को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। वे न केवल नरक को देख रहे हैं बल्कि उसमें डाल भी दिए गए हैं और अपने पूरे अस्तित्व से उसकी आग को महसूस कर रहे हैं।
ईश्वर के न्यायालय में अपराधियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे कुछ छिपा सकें या किसी बात का इनकार कर सकें, क्योंकि उनकी जबान की जगह उनके हाथ पैर और शरीर के अन्य अंग बोलेंगे और जो कुछ उनसे करवाया गया है वे उसका पूरा ब्यौरा देंगे।
इन आयतों से हमने सीखा कि पैगंबरों ने दुनिया के सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी है और सभी को नरक के खतरे से अवगत करा दिया है।
जबान जो दुनिया में बात करने का साधन है प्रलय में बंद कर दी जाएगी और हाथ पैर बात करने लगेंगे।
मानव शरीर के अंगों में एक प्रकार की समझ है और इसीलिए जो कुछ उनके माध्यम से कराया जा रहा है उसे नोट करते हैं और प्रलय में उन सारी बातों को बयान करेंगे।
श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।